दानम तू तो दानम नित्य दानम।
सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक निश्चय नहीं से सम्यक दर्शन का ये स्वरूप कहा व्यवहार में से प्रधानम परमार्थानाम आस्तागम तपोगताम त्रिमूढ़ा बोल मत्सांगम सम्यक दर्शनम अच्छा। समन्त भद्राचार्य महाराज के चरणों में बैठ के उनसे पूछें तो वो यही कहेंगे कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की परमार्थ रूप चर्चा का नाम ही सम्यक दर्शन है। और यदि सर्वार्थ सिद्धि में पूजपाठ स्वामी के चरणों में बैठ करके पूछें या उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र में देखें तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। किसी भी आध्यात्म ग्रंथ को उठा के देख लें तो आपा पर के भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन। टोरमल जी साहब से पूछें तो वो कहते हैं कि राग द्वेष घटाओने की श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन। हमें उलझा सा दिया नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? स्टेप बाई ले जाएंगे वो वहीं तक। सबसे पहला स्टेप है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, यही सम्यक दर्शन है। जब सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हो गई तो तत्व का अभ्यास करो, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। जैसे ही सात तत्वों का स्वरूप पर श्रद्धान होगा फिर क्या पर है और क्या स्व है ऐसा आपा पर का भेद विज्ञान अपने आप होगा। उसके बाद आत्मा में रुचि जागृत होगी और तब जाकर के हम राग द्वेष घटाने के लिए और अपने आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो परिणामों की निर्मलता है, दृष्टि की निर्मलता है, वो ही सम्यक दर्शन है। इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि हम कह सकें कि हम सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि कर्मों के क्षय क्षयोपशम और उपशम से होने वाली जो आत्मा की निर्मल अवस्था है वो आत्मा में हो सकती है। इस तरह से आचार्यों ने सोपान क्रम से क्रम क्रम से हम आगे बढ़े और धीरे धीरे करके और अंततः दृष्टि को निर्मल बना सकते हैं। मैं इसको सामान्य रूप से कहता हूँ कि दृष्टि की निर्मलता का नाम ही सम्यक है। कॉन्सेप्ट इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, विजन क्लियर हो जाना, वस्तु की वास्तविकता का बोध हो जाना, यही सम्यक है। तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पर जैन समाज क्यों नहीं होती? चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में एक स्वप्न लिखा है कि आने वाले पंचम काल में क्या स्थिति बनेगी, तो तालाब बीच बीच में सूख गया है, किनारे पर पानी है, किस बात का प्रतीक है? जो धर्म के स्थल हैं उन पर धर्मात्मा नहीं रहेंगे, वहां से दूर हट करके कॉलोनीज में चले जाएंगे। जितने भी मेन क्षेत्र होंगे उन क्षेत्र पर उस क्षेत्र का कहलाने वाला कोई नहीं होगा। दुकान लगाने आए हैं कहीं बाहर से और बस गए हैं वहीं पर, लेकिन वहीं जन्मे और वहीं जीवन बिता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मिलने वाला, चाहे शिखर जी भी क्यों ना हो। जहाँ से कि 20 तीर्थंकर, वो भी हुंडाओं सटनी की वजह से, वैसे 2400 तीर्थंकर वहीं से मोक्ष जाते हैं, लेकिन उस स्थान पर भी ये कहने वाला नहीं है कि हमारा नेटिव प्लेस यही है और हम यहाँ अपनी पूरी लाइफ पूरा जीवन यहीं बिता रहे हैं। बात ये काल दोष भी है और हमारी अपनी उपादान की कमी भी है कह लीजिएगा, शायद इसी कारण से। क्या आप अजमेर चतुर्मास करने नहीं चल सकते? ठीक है, प्रश्न तो प्रश्न है, आप तो किसी का दिल नहीं दुखाते और हाँ कह करके हमें खुश कर देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए किसी का दिल दुखाने का मन तो नहीं होता, लेकिन हमें अगर किसी को प्रसन्न करना है तो हमारे जीवन में तो एक ही की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, वो हमारे श्री गुरु हैं, उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, इसलिए वो जो आदेश देंगे उसी को पालन करूंगा, वो जहाँ के लिए कहेंगे वहाँ चले जाऊंगा, सिर पे पैर रख के जाऊंगा उनकी आज्ञा से, और वैसे तो एक कदम भी ना चलूंगा, चाहे कोई सोना बिछा दे उस रास्ते पर। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि अगर आप आचार्य जी की आज्ञा लेके आ जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रही बात आपके दिल दुखाने की, मैं नहीं दुखाता आपका दिल। आप मेरे को अपने पास चाहते हैं ना, तो अपन ऐसा करते हैं जहां मैं रहूं वहीं पर आप भी रह जाओ। मेरे साथ चतुर्मास कर लो, बहुत मजा रहेगा। कहीं कोई का भी दिल नहीं दुखेगा, सबका बढ़िया रहेगा। ऐसा कर सकते हैं। आज आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है, आप और भी संस्मरण सुनाना चाहते हैं। सुबह संस्मरण बहुत अच्छे सुनाए थे, आप कुछ और संस्मरण सुनाइएगा। एकदम तो नहीं याद आते हैं, बीच बीच में आ जाएंगे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बीच में शायद आ जाएं तो मैं सुना दूंगा। आचार्य श्री के जीवन के बहुत सारे संस्मरण हैं, उनकी अपनी, उनका अपना वास्तव्य, उनकी अपनी दूरदर्शिता, उनकी अपनी ज्ञान, उनके अपने अनुशासन। चले जा रहे हैं रास्ते से, बहुत थक गए 20 किलोमीटर चलने के बाद। सारा संघ आकर के रुका, सब आचार्य श्री के पैर दबाने लगे। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि मन तो ऐसा कर रहा है कि थोड़ा लेट जाए। तो सब तैयार हो गए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेट जाए। और बस इतना कहने के बाद आचार्य श्री पैर वैर सब सकोड़ करके और पीछे लेके खड़े हो गए। बोले मन भले ही कहे, लेकिन समय तो सामायिक का हो गया, इसलिए सामायिक करेंगे। कितना बड़ा मैसेज दे दिया कि आपका मन हो सकता है कि और चीज़ें चाहे, लेकिन जो कर्तव्य है वो सबसे पहले पूरा करना। मन तो संसार ही चाहेगा, मन तो आराम तक भी चाहेगा, लेकिन कर्तव्य पूरे करने में मन की नहीं मानना। ये मैसेज दे दिया। और भी बीच में आ जाएगा, याद तो सुना दूंगा आपको। अतिथि की परिभाषा देखिएगा, सन 75 की बात है, फिरोजाबाद में। और पहले क्या होता था कि आचार्य श्री का प्रवचन किस विषय पर है ये लिख देते थे लोग, आचार्य श्री उसी विषय पर प्रवचन करते थे। तो एक दिन बोर्ड पर लिखा गया कि कल आचार्य महाराज का प्रवचन अतिथि पर होगा। तो आचार्य श्री ने भी देख लिया कि बोर्ड पर अतिथि के लिए प्रवचन लिखा है। बस दूसरे दिन लोग जब प्रवचन के टाइम पर पहुंचे तो कहाँ वहाँ पर आचार्य महाराज। भागे भागे गए 3-4 किलोमीटर गाड़ियों से जाकर के, अरे महाराज आपका तो आज अतिथि पर प्रवचन होना था और आप तो बिहार कर गए। तो उन्होंने कहा कि यही तो प्रवचन ही तो कर रहा हूँ, अतिथि के मायने होता है जिसके आने जाने की तिथि तय ना हो, मैंने करके बता दिया। प्रवचन क्या करना, स्वयं ही करके बता दिया कि आने जाने की तिथि निश्चित नहीं है, चल दिए जब चाहे पीछे का मंडल उठाया, चल दिए। यहाँ जयपुर में इतनी अस्वस्थता थी, किशनगढ़ के पंचकालन के लिए आचार्य महाराज को 79 में जाना था, तब सारे लोगों ने दरवाजे वरवाजे बंद कर दिए थे दीवान जी के मंदिर में, कहाँ से जाएंगे। तो वो जो एक और मंदिर है ना बाजू में, क्या कहते उसको, हाँ वो नाम याद नहीं आता मेरे को, हाँ अभी जहाँ वेदी प्रतिष्ठा हुई, तो वहाँ के रास्ते से निकल करके उस मंदिर से निकल गए। अब करो तो उनकी निष्प्रहता और उनके अतिथिवत व्यवहार, ये बहुत सारे उनके जीवन की घटनाएं हैं जो मैं पूरे जीवन भर भी सुनाऊं, मैंने आपसे कहा था तब भी कम है। और क्या चीज़ पूछ रहे हैं हम, आपको वैराग कैसे हुआ आचार्य महाराज के दर्शन, ये एकमात्र कारण। आचार्य महाराज के दर्शन करने के बाद फिर सब बेमानी मालूम पड़ता था, फिर लगता था कि यदि लाइफ स्टाइल अपनी जीना है तो बस यही ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। फिर मैं सब चीज़ों को बहुत गौर से देखता था, फैमिली में जो भी फंक्शंस होते थे मैं दूर खड़े होकर देखता था। हाँ, सारी चीज़ों को फिर एकदम, जिसको अपन कहते हैं कि कीन ऑब्जर्वेशन, ठीक ठीक दिखने लगा था कि ये सब जितने भी संबंध हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है इनको प्रेम से जियो, लेकिन इनके बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो संसार बढ़ेगा। तो इस तरह से फिर आचार्य श्री के संपर्क में लगातार बने रहे, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, वो सारी चीज़ें फलित हुई और निकल आया वैराग। वैराग तो पता नहीं किसको कहते हैं, मैं नहीं जानता पर आचार्य महाराज से बहुत अनुराग है। अगर ऐसा पूछना चाहें कि मेरे वैराग का कारण, तो ये कहूँगा आचार्य महाराज से अनुराग मेरे वैराग का कारण। कौन दुनिया के झगड़े में पड़े, इनके चरणों में अपना जीवन बिताएं, ये बार बार मन था। सेवा करने का बहुत मन था आचार्य महाराज की। आज का श्रावक आत्मा से दूर क्यों भाग रहा है, धर्म के प्रति स्थायी रुचि क्यों नहीं रखता, क्या करें भैया, उपादान की योग्यता भी तो चाहिए। निमित्त मिलने के बाद भी उपादान में योग्यता ना हो, आज क्या कमी है। सच्चे देवगुरु शास्त्र का निमित्त आज भी है,
लेकिन अपने उपादान में अपने भीतर सामर्थ्य हो तब ना। गुरुजी पढ़ाए 100 बच्चों को, कोई गोल्ड मेडल लेता है, कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो गुरुजी तो सबको एक से मिले पढ़ाने वाले, लेकिन सबकी जितनी अपनी जैसी क्षमता थी, ऐसे ही आज मेजॉरिटी के साथ ये है कि उसको संसार की चीज़ें रुचती हैं। अपन क्षेत्र पर भी आते हैं तो देखो जरा, मैं यहाँ भी देखता हूँ, महावीर जी में तो बहुत देखता था मैं, 95% लोग और घूम फिर के लौट जाते, घूम फिर के 5% लोग वाकई दर्शन करते होंगे, और उसमें से भी फुली डिबोट होकर के तो 1% फुली डिबोट होकर जो वाकई वीतरागता को देखने आते हैं। बस वीतरागता की फुर्सत किसी को नहीं देखने की कि क्या नहीं चमत्कार, क्या मूर्ति का चमत्कार, क्या भव्य जिनालय बना, अच्छा ये अभी बनाया क्या, अरे बढ़िया डिजाइन बनाया, बस भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, फलाना बहुत अच्छा था। वापस अगर जाते समय कोई से पूछें कैसा लगा तो वो कहेगा साहब बहुत अच्छी व्यवस्था है, भगवान बहुत अच्छे थे, उनकी वितरागता से मुझे संदेश मिला। ये तो 1%, इसलिए लिखा कि 1000 पीछे एकाध कोई दृष्टि की निर्मलता वाला हो तो हो, वरना तो साहब को ताम झाम क्या वेदी बनी थी साहब, सोने का काम था, अपने यहाँ भी करवाएंगे अपन सोने का काम, ऐसे ही वाला करवाएंगे। हाँ ठीक है, भगवान तो गायब, वीतरागता गायब, बाकी सब राग रंग दिखाई पड़ता है। ये दृष्टि ही अपनी वैसी अपन ने बना ली है, अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए भैया, तब बनेगा काम। आप एक कविता सुना दीजिएगा आचार्य महाराज पर, सुना दूं? वाह सब देखो एकदम तैयार और जल्दी हैं, अरंत नाम सुना देते हैं, अरंत नाम के लिए लिखा है, आचार्य महाराज पर सुना देंगे, आज तो आचार्य महाराज के लिए है पूरा दिन। सिद्धशिला का आकार कैसा है? जैसा है वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें अभी तक, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, नहीं कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं, वैसे ही है, मेरे ख्याल से तो कोई अभी चेंजेस पता नहीं लगे कि कोई चेंजेस हुए हों उसमें, लोगों ने किए हो तो नहीं कह सकते, बाकी तो वो वैसे ही है जैसा शुरू से रहा, अर्धचंद्राकार है तो वैसे ही है। भगवान की पूजा करते समय किस तरफ खड़े होना चाहिए, ये ठीक है, भगवान यदि पूर्व मुख हैं तो हमें उत्तर मुख होकर के खड़े होना चाहिए, भगवान यदि उत्तर मुख हैं तो हमें पूर्व की तरफ मुख करके भगवान की पूजा के लिए खड़े होना चाहिए। सम्मुख बैठ करके पूजा करने का कहीं पर भी देखने में पढ़ने में नहीं आया, पूर्व दिशा में भगवान है तो उत्तर में, उत्तर में है तो पूर्व में, इस तरह से तो पूछा पंडित विद्वानों से तो वो यही कहते हैं कि इस तरह से प्रक्रिया, बाकी एक साइड छूटी रहती है दर्शन करने वाले को, कोई छूने उने का वो नहीं रहता। लेकिन फिर अपन ये कर लें कि पूजा ऐसे स्थान पर कहें करें जिससे दूसरे को भी डिस्टर्ब ना हो, अपने को भी ना हो, भगवान की छवि सामने दिखती रहे। फिर लास्ट में ये है कि पूरे मंदिर में आप कैसे खड़े होंगे, कौन सी डायरेक्शन में, तो कहते फिर मंदिर में किसी भी डायरेक्शन में ऐसी जगह खोज लो जहाँ से शांति से भगवान दिखें और अपनी पूजा निर्विघ्न चलती रहे। मंदिर में फिर ज़्यादा दिशाओं का विचार ना करें, अगर जब पहले नंबर तो मिल जाए स्थान तो बढ़िया है, उस दिशा में डायरेक्शन में अपन मुँह करके और बैठ जाएँ, नहीं मिले तो फिर कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जैसे भी भगवान दिखते भर रहे हैं ऐसी जगह पर बैठ। क्या श्रीमंदर स्वामी के चार कल्याणक होते हैं? असल में जो विदेश क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर है ना, तो वो तो अभी उनके चार ही कल्याणक हुए, उनको तो केवल ज्ञान हुआ है अभी, तो वो बैठे हुए हैं समोशरण में, फिर उनका मोक्ष हो जाएगा तो पांचों कल्याणक माने जाएंगे, लेकिन जब तक वो समोशरण में हैं तब तक कितने, चार ही कल्याणक माने जाएंगे। पर हमेशा वो बैठे ही रहेंगे ऐसा नहीं, उनका समय पूरा होने पर, आयु पूरी होने पर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। क्या मोक्ष कल्याणक नहीं होता? होता है, लेकिन जब तक वो अनंत अवस्था में है तब तक तो चार ही कल्याणक होंगे। भक्तांबर जी करने का समय क्या होता है? 24 आवर्स, कोई भी स्तुति हो 24 घंटे की जा सकती है। ये तो बात को लोगों ने ना हवा बना लिया, मतलब उसके साथ मंत्र तंत्र और दुनिया भर की चीजें जोड़ दी, लाल कपड़े पहन करके, पीले और सफेद पहन कर, 12 बजे रात से 3 बजे रात के बीच में, और कर रहे हैं साहब, लगे हुए हैं उसमें, बन गया वो एक रूटीन बन गया। पर सीधी सीधी प्रक्रिया थी, आदिनाथ भगवान की स्तुति करनी, मुझे आदिनाथ भगवान की स्तुति तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, किसी भी स्तुति परक ग्रंथ के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं, बाकी सिद्धांत ग्रंथों के लिए तो टाइम फिक्स है, लेकिन इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं, जब आपका मन बने तब आप आराम पर इतना ध्यान रखें कि क्योंकि भगवान की स्तुति है इसलिए शुद्धि पूर्वक मुख शुद्धि भी होनी चाहिए, शरीर भी शुद्ध हो तो और आनंद आता, नहीं तो मजा नहीं। आप बिस्तर में बैठे बैठे पढ़ो तो कैसे मजा आए, कैसे उसका फल है। और शुद्धि पूर्वक नहा धो करके और फिर पढ़ो तो उसका एक आनंद अलग, उस तरह से कर लेना चाहिए भैया। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है 24 घंटे, और अगर करना भी चाहें तो मैंने पूछा विद्वानों से तो वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति 24 घंटे का पाठ करने की जिम्मेदारी ले तो जहां बैठा हुआ है वहां से उठे नहीं, फिर वो टॉयलेट भी नहीं जा सकता। हाँ, निर्जल उपवास करके और 24 घंटे उसी स्थान पर भक्तांबर का पाठ, ये किराए के आदमी ला करके चाय पिला पिला करके और भक्तांबर का 24 घंटे का कंटिन्यू रखना, ये कोई माने नहीं। हाँ, लोगों को चाय पिला पिला कर रात में वो सोते रात में अगर कोई सुने तो ऐसा लगता है कि जब की लग गई वक्त ऐसा क्या ये है। मैं अपनी सील नहीं लगाऊंगा, आप जो करेंगे मैं हाथ भी नहीं पकड़ूंगा, लेकिन मैं आप जो कहेंगे उस पर आगम के विरुद्ध उस पर सील नहीं लगाऊंगा, थप्पा नहीं लगाऊंगा कि हाँ महाराज ने कह दिया था दो दो घंटे वाला ओके। वैसा नहीं कहूंगा, आप करते हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन सही प्रक्रिया क्या है कि एक व्यक्ति और पूरा करे, दिन में करे और बढ़िया, 8 बजे शुरू करो, 4 बजे तक 8 घंटे जितना बढ़िया से करना उतना बढ़िया, कोई विकल्प नहीं। सवेरे नहा धो के बैठे हैं, शाम को अंतहु तक हमने किया, फिर बाद में हमारी शक्ति नहीं, एक आसन करेंगे पाठ पूरा होने के बाद 8 बाट से भोजन करें, कोई विकल्प नहीं, क्या इसमें वो है। लेकिन अब अपना अपना पैटर्न है जैसा आपको करना हो, पर ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि पाली बदल बदल करके और फिर वो करें। चल चेतन प्यारे 20 विदेह मझा, ये भजन, ये भजन हम रोज पढ़ते हैं, पर किसी ने हमसे कहा कि हमको विदेश से जाने की भावना नहीं करनी चाहिए, ये ठीक है क्या? उनके पास टिकट नहीं होगा इसलिए उनने कहा होगा, और क्या, विदेश क्षेत्र जाने की भावना क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका कारण तो पूछना था कि क्यों विदेश क्षेत्र जाने की कामना, शायद इसलिए कहा हो, शायद उनको शायद ये मालूम हो कि मनुष्य से मनुष्य जब भी बनता है तो मिथ्यात्व के साथ ही बनता है, शायद इस वजह से कह दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 123 जीव भद्र मिथ्या दृष्टि यहां से जाकर के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में और वहां पर रत्नत्रय को धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता बनी, तो ऐसा नहीं है, वहां हमेशा धर्म तीर चलता रहता है। तो अपने को भावना ये भानी चाहिए कि ऐसा ऐसा स्थान मिले हमको जहां की ये निमित्त प्रबल निमित्त मिले, भगवान का समोषण मिले, कल्याण के और भी जो कारण हैं वो सब मिले तो अच्छा रहे। पता नहीं उन्होंने किस दृष्टि से कहा भैया, स्थापना में पुष्प ही क्यों चढ़ाते, आप बताओ फिर चेंज कर लेते हैं, कोई सजेशन आपका, पुष्प की जगह पर चांद वो चढ़ा दें क्या, गेहूं वगैरह
नहीं
ऐसा कुछ हो अगर प्रावधान इसका, लिखा तो यही है कि स्थापना जो करेंगे वो पुष्प से करेंगे। अब पुष्प कौन से बनाना, आपको चावल को रंग करके बनाना है या कि लवंग वो चढ़ाना, सोने चांदी के चढ़ाना हो सोने चांदी के चढ़ाओ, लेकिन पुष्प है। ये संख्या के बारे में पूछा था तो वो कहते हैं कि संख्या कहीं लिखी नहीं है कि 3 चढ़ाएं कि 9 चढ़ाएं, अपन ने वो प्रतीकात्मक बना लिया, अपन क्या चाहते हैं पूजा से रत्नत्रय की प्राप्ति, कि भगवान से जब भक्ति करते हैं तो क्या, मेरे न चाह कछु और ईश रत्नत्रय निधि दीजिए मुनि। सो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रतीक रूप अत्र अत्र 3 चावल, फिर तिष्ठ में भी 3 रत्नत्रय के प्रतीक, और फिर 3 तो 9 हो गए, और अगर कोई एक एक चढ़ाए तो 3 हो जाएंगे। बाकी इसके पीछे और कोई कारण मुझे नहीं समझ में आया, स्थापना में संख्या का क्या है, क्या हम भगवान बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं, पर विदाउट एफर्ट नहीं, खुद एफर्ट करना पड़ेगा, कोई बना करके हमको रख देवे ऐसा भी नहीं हो, भगवान जी भी आ जाएं तो भी हमें स्वयं तैयारी करना चाहिए, हमारे भीतर भगवान बनने की सामर्थ्य है, लेकिन उसे हमें प्रकट करने के लिए जो भगवान बन चुके हैं उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, जो भगवान ने उपदेश दिया है उस उपदेश के अनुसार मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए, तब जाकर के बनेंगे। काले रंग के कपड़े क्यों शुभ का प्रतीक है, इसलिए शुभ कार्यों में काले रंग का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन देखो मुनि महाराज का कमंडल काले रंग का होगा, क्यों काले रंग का होगा? काला रंग सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी रंगीनी खत्म हो जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये उनका कमंडल है जिनके संसार की सारी रंगीनी खत्म हो गई, जिन पर अब कोई रंग नहीं चढ़ने वाला, काले रंग पर कोई नहीं रंग चढ़ता। हाँ, तो फिर उनके लिए वो ठीक है, लेकिन धर्म के कार्य में अपने यहाँ पर अच्छी लेशाएँ, शुभ लेशाएँ तो तीन ही कहीं हैं, पीत, पद्म और शुक्र। तो अपन सारे धार्मिक अनुष्ठानों में पीले या केशरिया या कि श्वेत वस्त्र पहनेंगे, कृष्ण नील कापूत काय को पहनेंगे, वो तो अशुभ लेशा का प्रतीक है। तो इस वजह से शुभ अनुष्ठान में ऐसा कर लेते हैं। और क्या है, गृहस्थ घर में कैसे सुखी रहे, संतोषी रहे तो सुख ही सुख है, और असंतोष है तो दुनिया भर की चीजें जोड़ के रख लो तो भी दुख। सारा संसार घर में भर के रख लो और संतोष ना हो तो सब व्यर्थ, और संतोष हो गए और ढीला ने हुए पास में तो भी मजे से सोते पेपर बिछा करके आराम से, बिछाने तक के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, बिछा के सो जाएंगे, वहीं जमीन पे सो जाएंगे, पर खुश है तो संतोष ही मुख्य है इसमें। अरे आते ही चले जा रहे होंगे कागज, मैं सोच रहा था कि पूरे हो गए, इनके पीछे भी लिख सकते हैं, उसको कट करके। घर में मूर्ति खिलौने जैसी रखनी चाहिए या नहीं? देखो भैया, भगवान की मूर्ति कोई शो पीस तो है नहीं, सजावट का सामान है क्या? वो हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए है क्या, बताइए आप? लेकिन आजकल हम एज ए गिफ्ट भगवान की मूर्ति देने लगे, हम अपने घर में भी रखने लगे। विनय नहीं हो पाए, विनय नहीं होती, अभिनय होती है तो उल्टा लॉस होता है। वहाँ हमें सब कुछ करना है घर गृहस्थी में, वहाँ हम भगवान को अगर रखें भी तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ की पवित्रता बनी रहे। एक स्थान घर में ऐसा हो, पहले लोग गृह चैत्यालय बनाते थे, उसमें प्रतिष्ठित प्रतिमा रखते थे और उसकी पूजा प्रक्षाल इत्यादि करते थे। अब वो चीज़ संभव नहीं है तो फिर अप्रतिष्ठित प्रतिमा तो रखनी नहीं चाहिए सोपीस की तरह, और अगर आप रखते भी हैं तो उनके सम्मान का ध्यान रखें। मैं इतना ही कहूँ, और भी है घर में किस तरफ भगवान का आला ताक, मतलब आला है ना, आला बोलते हैं। अगर आप अगरबत्ती से आरती करते हैं तो बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो शुरू करने की आवश्यकता है। क्या प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया? अब एक आध दिन भगवान से पूछ लो ना कौन सी तरफ रखना उनको, वो जहां पर चाहे वहां पर रख दो। वैसे हम ऐसे जवाब देते हैं थोड़ा मजे के जवाब, फिर उसके बाद सही जवाब देंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देव स्थान माना गया है। हम जब भी बैठें, धर्म ध्यान करें या कि कोई पाठ वगैरह करें घर में, तो उस डायरेक्शन में बैठें, वो पवित्र स्थान है, इतना ही ध्यान रखें। हम नरक होकर आ गए हैं, अच्छा आपको मालूम है, पर विश्वास नहीं होता। कैसे विश्वास हो? आचार्य महाराज कहते हैं कि थोड़े थोड़े से जीवन वर्तमान को देख करके पता कर सकते, जो अपने घर गृहस्थी में भी जहां जाता वहां मारी थारी करता है तो समझना वो नरक से आया, और जो बहुत मायाचारी करता समझना वो पशु पर्याय से आया। जो बड़ा संतोषी है, चार बातें सुन लेता है, चुपचाप रहता है, बड़ा देव आदमी है, देव पर्याय से आया। मनुष्य हमेशा मुझे सम्मान मिलना चाहिए, डोमिनेट करूंगा मैं, पूरी फैमिली में डोमिनेट करूंगा। छोटा सा बच्चा भी होगा तो डोमिनेट करने का जो भाव, मनुष्य मान कषाय का पुतला है। देख लें अपन कि कहाँ से आया हूँ, एक 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 रफ आइडिया दे रहा हूँ, कहीं पे कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, अपने खुद के परिणाम देख करके पता कर सकते हैं। और ये आचार्य भगवंतों ने क्यों चारों गतियों के बारे में बात करी और क्यों ये कहा, इसलिए कहा कि हमें ये समझ में आवे कि हम कितना संसार में भ्रमण कर चुके हैं और कैसे कैसे दुख उठा चुके हैं। हमें विश्वास नहीं होता ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन ऐसा सब हमारे जीवन में घटित हो चुका है। अगर हम भगवान की वाणी पर विश्वास रखें तो इन चीज़ों पर भी विश्वास अपने आप हमारे मन में आ जाएगा कि ठीक तो कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं तो फिर ठीक कह रहे हैं कि हमने ये सब दुख झेले होंगे। अच्छा अपन बताओ, जिंदगी भर में कितने दुख झेलते हैं अपन? और फिर जैसे ही कोई सुख का क्षण आता है तो सब भूल जाते ही नहीं, याद तक नहीं रहता कि कौन कौन से जिन चीजों से दुख पाया है वे चीजें भी हम फिर से दोहराने लगते हैं और भूल जाते हैं। फिर कोई याद दिलाता है कि अरे इसी को करने से तो दुख मिला था, हाँ अब कुछ नहीं, संदर्भ बदल जाता है, दुख तो वही रहता है, हैं? तो हमें लगता है कि नहीं कुछ नया है, यहाँ नया कुछ भी नहीं है, यहाँ सब हम सब रिपीट कर रहे हैं वही सब चीज़ें। सुबह से उठते हैं, नहाने धोने टूथपेस्ट से लेकर के रोज, कभी ऊब नहीं होती, रोज वही दाल रोटी, कभी नहीं ऊबते नहीं अपन, हाँ रोज ये सोचते हैं कि सब नए सिरे से कर रहा हूँ, जबकि जिंदगी निकल गई करते करते, कभी नहीं लगता अपने को। जिस क्षण हमारे भीतर इन सब चीज़ों के रिपीट करने का भाव आ जाता उसी क्षण बैराग हो जाता, यही तो है। जिस दिन ये लगने लगेगा कि हाँ मुझे अब अपना कल्याण कर देना चाहिए, सूखे द्रव्य से पूजा करते समय जब जल चंदन ना हो तो अर्घ में क्या चढ़ाएं, बोलते समय जल चढ़ाने के लिए क्या बोलें, तो इसमें बोल नहीं सकते, फिर तो पढ़ भर लिया अपन ने, लेकिन जब कुछ जल ही नहीं चढ़ा रहे हैं तो जल का मंत्र कैसे बोलें, ओम ब्रीम वाला तो नहीं बोलना चाहिए। फिर सूखी द्रव्य में तो दो ही तीन चीज़ें, वैसे तो सूखी द्रव्य तो मन समझाने के लिए द्रव्य तो पूरी होती नहीं, द्रव्य तो अष्ट द्रव्य ही कहलाएंगे, आपने थोड़े चावल रख दिए, थोड़ी सी चिटके रख ली, वो क्या बोलते हैं उसको, नारियल की है और बादाम बादाम रगड़ी जो भी है, बस और कहाँ से और क्या लाओ, जल चंदन के बिना आठ द्रव्य बन ही नहीं सकते, तो फिर उसमें मंत्र वगैरह बोलने की आवश्यकता नहीं। यदि हमारा मन माला फिरने में नहीं लगे, हम शास्त्र अध्ययन में लगे रहें तो क्या नुकसान है? एक नुकसान है कि जिस दिन आंख से पढ़ने में नहीं आएगा, जिस दिन लाइट नहीं होगी और जिस दिन अस्वस्थता हो जाएगी और माला फिरने का अभ्यास नहीं है तो बड़े बड़े संकलेश ही होगा। जितने ज्ञानी आदमी हैं, पढ़ंता क्या कहते हैं उसको, पढ़ंता, दिन भर घुसे रहते किताब में, उनको उनसे मुझे यही कहना है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, राग द्वेष कम करने के लिए पुस्तक पढ़ना चाहिए, पुस्तक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने लिए डेली रूटीन में जाप देने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, भले ही मन न लगे लेकिन हम उस क्रिया को तो दोहराएंगे। एक एलक जी थे, वो कॉमा में चले गए थे लास्ट मोमेंट पर जीवन के, लेकिन उनके नेचर में माला फेरने की आदत थी। आप आश्चर्य करेंगे कि कॉमा में होने के बाद भी उनके हाथ में अगर इस उंगली में नहीं, इस उंगली में माला फंसा दो, फिरने लगती थी। वैसे कुछ भी नहीं, उनको होश ही नहीं, उठाना धरना पड़ता था, मैंने लैट बात सब उनको दूसरे को करवाना पड़ते थे, कॉन्शियस था ही नहीं उनको, अनकॉन्शियस, लेकिन माला पकड़ा दी तो माला फिरने लगी अपने आप। सारे डॉक्टर्स कहते थे कि ये क्या चीज़, अनकॉन्शियस है, कॉमा में है, और लेकिन माला की हैबिट वो भीतर जो है चलता है निरंतर। तो कभी कभी ये चीज़ काम आ जाती है, अभ्यास करना चाहिए सब चीज़ का। देखो अच्छा ये बताओ, बच्चों के 6 पीरियड होते हैं, उसमें से अगर वो मैथ में कच्चे हों तो अपन क्या सजेशन देते हैं, देखो तुम इस विषय में कच्चे हो, उसको और ज़्यादा पढ़ो। शावक के लिए भी ऐसा ही है, अगर माला फेरने में कच्चे हैं और माला फेर नहीं, वो मन नहीं लगता इसलिए छोड़ दिया, कल के दिन आपका मंदिर जाने मन नहीं लगा तो मंदिर छोड़ दे। लेकिन किसी का अभी तक ये नहीं हुआ कि हमारा भोजन करने में मन नहीं लगता वो नहीं, उसमें तो खूब मन लगता है, दुनिया के सब कामों में मन लगता है। नहीं ऐसा नहीं, धर्म के कार्यों में मन नहीं भी लगे फिर भी हमें उन्हें करने का अभ्यास बनाए रखना चाहिए भैया, वो अभ्यास काम आता है। किसी दिन मन लग जाएगा और अभ्यास है तो वो अभ्यास काम आ जाएगा। ये हो गया, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, मेरी भावना में ऐसा लिखा, उसका अर्थ क्या है? दुष्कृत समझते अपन लोग, दुष्कृत बोलते हैं पाप को, और दुष्कर मतलब कठिन, पाप करना कठिन हो जाए, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, यानी जो बुरे कार्य हैं, खोटे कार्य हैं, वो करना कठिन हो जाए, कोई कर ही ना पाए, ऐसी स्थिति इस संसार में अपने आप, जो अपने परिणाम अच्छे होंगे तो अपन को बुरा कार्य करना कठिन हो जाएगा कि नहीं, कहना ये चाह रहे हैं कि बुरे कार्य कठिन हो जाए। और अच्छे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न, आपके मुख से नमोकार मंत्र सुनने की प्रबल इच्छा है, वो जो संडे को बोलते हैं वैसा वाला, वैसा वाला तो वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब प्रवचन करते हैं, जब लास्ट में आता है वो, ऐसे नहीं आता वो। मुझे उसका एक बार पूरा वीडियो लगाए रहे थे वो पूरे दिन, कि जब कभी आपके मन में आए तो बोल देना। आ ही नहीं था दिन भर, ऐसे आता नहीं वो, मैं अपनी तरफ से नहीं ला सकता वो ऑटोमेटिकली, कोई अभ्यास नहीं है उसका, कब से शुरू हो गया मुझे खुद भी नहीं मालूम। तो जब कभी प्रवचन होता है और उसके बाद अपने आप, इसलिए आप वेट करो, थोड़ा रहो, अगले संडे तक साथ में होएगा कोई। आप हमारी एक भी बात नहीं मानते, आप अपनी सब मनवा रहे हैं। बताइए, आगम के अनुसार भगवान के अभिषेक की बोली लगाना उचित है क्या? आगम में तो भगवान ने ये नहीं लिखा, आगम में तो ये लिखा है कि किसी न किसी बहाने त्याग करो, ये अवश्य लिखा। श्री जी के अभिषेक के लिए अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इतना निछावर कर दूंगा, अपना पूरा जीवन निछावर कर दूंगा श्री जी के अभिषेक के लिए। बस वो भावना अगर है तो जो अभिषेक करेगा वो अपने आप निछावर करेगा। लेकिन अब सारी चीजें कमर्शलाइज हो गई। हाँ, सारी चीजों में पैसा प्रमुख हो गया। अब पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ फंक्शन करो, ओकेजन। अब भीड़ जोड़ना है तो कोई ना कोई फंक्शन करो। अब जैसे कि यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो एक्चुअली लोगों को इजीली देना चाहिए कि हमारा क्षेत्र है और हम देंगे। हमने तो एक बार कहा था कि अगर आपको पुण्य कमाना है तो अपने आप डाल के चले जाओ, ना रसीद बनेगी ना कुछ होगा, ना हमको हिसाब देने वाले, आपको आपके मन में आवे तो डाल के चले जाओ। तो फिर लोगों को धर्म के अवसर जुटाना पड़ते हैं कि किसी बहाने, अच्छा और उस बहाने पर आ भी जाते हैं, और ये फंक्शन है भैया चलो मस्त का अभिषेक करने का मिलेगा वहां पर, और फिर उस बहाने सब माहौल बन जाता है तो त्याग की भावना भी बन जाती है। शायद इसलिए ये प्रक्रिया शुरू हुई होगी, लेकिन इसमें खतरे भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। हमें पैसे को प्रमुखता ना दे करके और अपने भावों को निर्मल करने की प्रक्रिया मान करके करना चाहिए कि हम तो सब कुछ निछावर कर सकते हैं, हमको अभिषेक का मौका मिले तो। और उस निछावर करने से क्षेत्र का उद्धार भी हो गया और अपना त्याग भी सद गया, दोनों चीजें हो जाती हैं तो बहुत अच्छा रहे। घर में घी के दीपक से आरती करना गलत है क्या? यदि गलत है तो किससे करें? अब आरती तो दीपक से ही होती भैया, और कैसे? वो आ गया एक ठो वो मशीन वाला, वो क्या, वो लाइट वाला उसमें, तो कई लोग हमें पता लगा कि कई लोग उससे करते हैं, लाइट से ऐसे जला करके। हाँ, क्योंकि दीपक जलाएंगे उसमें घी डालेंगे तो फिर जीव वगैरह हिंसा हो जाएगी। वैसे अपन यहाँ पर कार से आएंगे, उसमें कितने, हम कल देख रहे थे यहाँ पर लेटे थे तो इतने छोटे छोटे से संगी पंचेंद्री मेढक, जरा सा पैर पड़ जाए रात में तो गया वो, संगी पंचेंद्री है बाबा। और एक बार कार से चले, संगी वंगी पंचेंद्री क्या, सब नीचे खत्म। स्कूटर गाड़ी से, उससे तो आ जाएंगे मंदिर, लाइट जलाएंगे, हेलोजन जलाएंगे, लेकिन एक दीप जलाएंगे तो और हिंसा हो जाए। अपन बहुत सियाने हैं वैसे। अब आप समझ गया होंगे, हमें और कुछ नहीं कहना, आप जानो हैं और क्या कहें। पूजा करने के लिए कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, बता दिया हमने, तीन ही हैं अपने यहाँ पर, पीत पद्म और शुक्ल। यदि मंदिर जी में हम पूजा कर रहे हैं और कोई सज्जन भगवान का अभिषेक करें तो क्या हमें अपनी पूजा छोड़कर अभिषेक में ध्यान देना चाहिए? जाप दे रहे हैं तो क्या करें? अब अगर आप जाप दे रहे हैं वो पूजा कर रहे हैं तो आपको अभिषेक दिख कैसे गया, पहले ये बता, ये क्लियर कर लो फिर हम जवाब दें। अगर आप पूजा कर रहे थे तो आपको अभिषेक करने वाला और अभिषेक की प्रक्रिया कैसे दिखी? इसका मतलब आप पूजा में लीन नहीं थे, और जब आप पूजा में लीन नहीं थे और आपने अभिषेक की प्रक्रिया होते देखी है तो फिर आप कृपा करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पूजा को विराम दो और अच्छे से अभिषेक देख लो और फिर बाद में करो। क्यों, आपका मन तो वहीं धरा हुआ है, देखें कि नहीं देखें, गड़बड़ ना हो जाए, खड़े हों कि नहीं हों, अभिषेक होने लगा, इसी तरह माला। लेकिन माला के बारे में ऐसा नहीं है, अगर आप माला देख दे रहे हैं तो माला भी देते रहो, 2 in 1 कर लो, अभिषेक भी देखो माला भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्या बताएं, क्या सलाह दें हम आपके लिए, क्योंकि अब माला तो छोड़ी नहीं जा सकती है। अभी पूजा में तो ये है कि हाथ जोड़ लिए, वहीं बैठे बैठे अभिषेक देखने लगा, हाथ जोड़ लिए और वो वहां से हटने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर कहा गया है कि स्थापना एक बार कर ली तो अपने स्थान से फिर नहीं हटेंगे पूजा में, लेकिन वहीं हाथ जोड़ सकते हैं, हैं? पूजा के बीच में से। अब बताओ क्या कहें। हाँ, तो आप पूजा करने से पहले पूरी सामग्री पहले से लगा के रखें, ऐसी गलती बार बार ना करें, अपने को जो पूजा करनी सब वहीं रख लें, अच्छा नहीं। एक बार स्थापना कर ली तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि फिर उठ करके नहीं जाए तो अच्छा है। वो एक्सेप्शन में भी पॉसिबल, जैन पत्र पत्रिका और कैलेंडर में जिनेंद्र भगवान और आचार्यों के फोटो लगे रहते हैं, पर कैलेंडर के पूरे हो जाने पर फोटो या कि पत्रिका का क्या सदुपयोग करें, ये आप डिसाइड करें। अपने यहाँ तो जल विसर्जन की प्रक्रिया कही है, देख लें आप। घर में अस क्या लिखा, घर में ऊपर मंदिर जी की टोंक की छाया आए तो क्या अशुभ होता है? मंदिर की छाया घर पर पड़ती है तो इसका मायना है कि उतना स्थान पवित्र होना चाहिए, है ना? जितने में भगवान के शिखर की छाया पड़े वो स्थान पवित्र होना चाहिए। अगर अपन उस स्थान को पवित्र नहीं रखेंगे तो उसका पनिशमेंट मिले, और गृहस्थी में तो सभी पाप होते हैं वहीं पर, तो फिर अपने को वो स्थान जितने में छाया पड़ती है उतना छोड़ देना चाहिए, वो धर्म ध्यान के लिए ही रख लेना चाहिए, बाकी पीछे हट जाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? महाराज, सबसे ज़्यादा आयु किस जगह बितानी पड़ती है? नरक में बितानी पड़ती है या देव में बितानी पड़ती है? 33 सागर सर्वार सिद्धि के देवों की है और साथ में नरक की 33 सागर। क्या 40 साल ही पढ़ना चाहिए? स्तुति पढ़ने में तो कोई बात नहीं भैया, स्तुति पढ़ने में क्या दिक्कत है? ये सारे प्रश्न आपके हो गए। मैं आपको आचार्य महाराज के जो मैंने बहुत पहले सन 1988 की बात, हाँ, उस समय मैं गुना गया था तो वहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा भगवान नहीं हो सकता जिसको कि हम सभी लोग मान सकें? सबके अपने अपने भगवान हैं, एक कोई ऐसा जिसको सब मान सकें? तो फिर मैंने आचार्य महाराज को याद करके और जो लिखा था मैं उन्हीं के लिए समर्पित भी किया उस चीज़ को, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो सांस बन मेरे हृदय में आता रहा जाता रहा वो देवता, मैं बधा जिससे मुझे जो मुक्ति का संदेश नव देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो मूर्ति में कई रूप धरता पर अरूपी ही रहा वो देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, मैं जागता हूँ सो गया या ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वो देवता, जो गति था मेरी नियति था ठीक मुझसा ही मुझे करता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा। ये मुझे आचार्य के लिए मालूम था, सुना दिया। अपन मैत्री भाव कर लें, समय भी अनंत नाम की भी सुना दें। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है रिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीर है, सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम। सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। मैत्री भाव के